yanımda. Ecelim anvanı tanım gurme arafana gece sana mana अब तो रहन करेंगे में सैयदा इमाम बैठने गुजर हसन कबीर दिन की औलाद में से थी, बड़ी आबिद औरत थी। जो बॉम्बे वाले हैं उनको शायद ख्याल हो गए, मिनी बाजार से थोड़ा आगे वहाँ भोपाली बिल्डिंग थी। हमारे भगत काला रोड़ा भी इसी बिल्डिंग में रहते थे और सही बाईमाम बैगम इसी भोपाली बिल्डिंग में रहती थी। काली बोला जमात खाना करीमा बाप नजदीक है। साढ़े दस ग्यारह बजे के करीब सैयदा इधर जमात खाने में आ जा रहे और यहाँ आके जनाज बोल रहे। अभी हुआ यह कि अकेली आती थी, एक दो भाइयाँ आ गई, चार पांच आ गए, दस बीस आ गए। अब तो रोज ऐसा हुआ कि सारा काली मोहल्ले की औरतें इधर आके बैठे हैं जनाज बोले। कभी कभी आवाज भी करती थी। बॉम्बे में उस जमाने में और शायद अभी भी मरद लोग तो घर से चले जाते हैं, फिर दोपहर को खाने के लिए आते भी हैं, औरतें खाना पका के या टिफिन में भर के रखती हैं और टिफिन ले जाने वाला सर्विस जो देता है वो टिफिन ले जाता है, वो खा के खाली टिफिन वापस भेजते हैं। अब यहाँ औरतें सैयदा इमाम बेगम के जिनान गोश्त में इधर पड़ी रहे, देर हो जाए, टिफिन भरा नहीं गया और उधर वो भूखा गुस्से कर रहा है, घरों में झगड़े शुरू हुए, हसन अली शाह माँ बाप के हुजूर में शिकायत पहुंची। वो गलती आज सैयदा इमाम बेगम को जमत खाने मत आया करो और हुक्म दिया इसके दीदान मत करो। रोई रोई और कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। उसी जगह दोपहर के बाद आया करती थी। तो जब वापस इमाम ने उसकी बंदी को खोल दिया करके उसके किनान पढ़ा करो, तो उस वक्त मौला आते थे और उसने यह किनान बनाया। अब तो धन मन धन गुर में तो दिना में दिना में दिना रहमान ये तो ज्ञान के अवकाश है। अरे अल्खे नहीं, इसका मतलब है जितने भी ग्रहण करने वालों में, जितने भी ग्रहण करने वाले हैं, उन सब में बेहतरीन ग्रहण करने वाला मैसेज ये था कि तन मन धन ये हमारी इस्माइली दीन की बैत का उसूल है। हम जब इमाम की बैत करते हैं तो तन मन धन यानी कि हमारा बदन, हमारा मन, हमारी दौलत जो कुछ भी है हम इमाम को सुपुर्द कर देते हैं। यह गुलामी की निशानी है। ये जो सिलसिला है जमाने के इमाम की या नबी की खिदमत करना बहुत पुराना सिलसिला है। हर एक नबी के जमाने में कुछ ऐसे लोग होते थे कि जो अपना घर बार छोड़ के नबी के साथ रहते थे। हजरत रसूल अकरम से पहले जितने नबी थे, इस वक्त मेरे पास ये टाइम है कि मैं आपको ये समझाऊं कि उस जमाने के अंदर जो इमाम था वो बैकग्राउंड में था। यानी बैकग्राउंड का मतलब यह कि फ्रंट में नबी होते थे लोगों को हिदायत करने वाले, लेकिन इमामत का जो नूर था वो बैक में रहता था। जैसे हजरत मूसा के साथ हजरत हारून थे, उनके बेटे भाई थे, हजरत इस्माइल के, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके भाई थे, बेटे भी थे। तो इस तरह से हर जमाने के अंदर यहाँ रहा, या रसूल अकरम के ज़माने में भी उनके भाई थे मौला अली। लेकिन जब तलक के नबूवत रही, नबूवत माँ की तरह है, बच्चा पैदा होता है माँ के पास रहता है, एक खास उम्र तक वो माँ ही के पास रहता है और माँ उसको सब कुछ सिखाती है। मैनर्स सिखाती है, खाने पीना सिखाती है, उठना बैठना सिखाती है, अदब आदाब सिखाती है, मजहब सिखाती है। बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है, जो बड़ा होता है तो माँ से दूर हटता जाता है, और 7-8-10 बरस का होता है तो बाप के नज़दीक पहुँचता जाता है। जवान होता है तो माँ के पास कभी आया, माँ ऐसे हो ठीक है ठीक है बस चला गया। और छोटी उम्र के अंदर बाप भी जब भी आता है तो जरा सा प्यार कर चले जाता है, माँ उसको पाल के बड़ा करती है। नबूवत है वो माँ है। जब से जमीन आसमान बना तब से मोहम्मद का नूर नबूवत की शक्ल के अंदर हर जमाने के अंदर मौजूद था। इन नबियों ने हमको मनर सिखाए, नबियों ने तहजीब सिखाई, तमद्दुद सिखाया, कल्चर सिखाया, आदतें सिखाई। नबियों ने हमको ये सब चीज़ें सिखाई कि जो इंसानी समाज के अंदर, माशरा के अंदर ज़रूरत है अच्छी अखलाक की। रसूल अकरम किसी एक आदमी के घर पे खाना खा रहे हैं, बड़ा सा थाल है, 7-8 आदमी बैठे हैं, और आपने अरबों की हिस्ट्री तो पढ़ी है, ये जाहिलों की जाहिल कौन थी उस जमाने के अंदर। हिस्टोरियन में रसूल अकरम से पहले का जो पीरियड था उसको डार्केस्ट पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री लिखा है। जाहिल थे, बेरहम थे। अभी इससे ज्यादा क्या बेरहमी हो सकती है कि खुद की लड़की को उठा के ले जाओ और घड़ा खोद के उसमें दफन कर देंगे, जिंदा लड़की को इसलिए कि दामाद न बनाना पड़े, सर झुकाना न पड़े, अपनी लड़की को अपनी धात में से निकले हुए तुख्म को जिंदा जमीन में दफन कर देना, ये अरबों की हालत। लड़का है वो गाय बकरियां चरा रहा है, भूख लगी है, छुरी निकाली और बैल के पड़ते में थोड़ा सा एक दो बतल इतना गोश्त निकाल लिया, कच्चा गोश्त खा रहा है और वो तड़प रहा है। इस कंडीशन के अंदर जब इस्लाम जाहिर हुआ तो मैं ये बात कर रहा था, एक घर में जोर खाना खा रहे थे और कुछ लोग 7-8 उस थाले के इर्द गिर्द बैठे थे। घर का जो मेजबान था, होस्ट था, उसने अच्छी अच्छी बोटियाँ रसूल अकरम के सामने ढेर कर दी और बाकी मेहमानों को भी एक एक बोटी उनको दी। अभी मेन आदमी तो रसूल थे ना खाने वाले, वो सामने एक आदमी बैठा था, उसने इधर उधर देखा, सब बोटियाँ तो सामने हैं, रसूल के सामने हुजूर बातें भी करते थे, खाते भी थे, तो इसने हाथ मारा है कि लंबी बोटी से खींच नदी नीचे निगाहे हैं। हुजूर कहते हैं मेज़बान ने होस्ट ने जो कुछ तुम्हारे सामने रखा है उसी को खाओ, दूसरों की बोटियों पे हाथ मत लगाओ, मैनर्स है। खाते खाते कोई दूसरा आदमी था, उसको छींक आई, मुंह से अंदर के लुआब के जर्रे निकले, बूंदे पड़ी, सारे थाले में फैल गए। हुजूर ने हाथ खींच लिया, नाक में से मुंह में से छींक मारते वक्त मवाद निकलता है। देखो तो इस परवरदिगार के नूर की बात करता हूँ, गुस्सा नहीं किया। हुजूर ने कहा जब ये छींक आ गए या तुम बगासा खाओ, यानी कि फरमाया कपड़ा रखो, अगर जल्दी से कपड़ा नहीं मिला तो उमदा हाथ रखो। ये छोटी छोटी बातें भी नबी ने हमको सिखाई, क्यों? माँ है। ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर जो जिसको हम समाज कहते हैं, मुआशरा कहते हैं, सोसाइटी कहते हैं, उसको ऐसे ऐसे मैनर्स सिखाए नबी ने। ऐसी तो बहुत सी बातें हैं हुजूर ने सिखाई। 1400 साल पहले के जब दुनिया बिल्कुल बेखबर थी, हुजूर दातन किया करते थे, अरे टूथब्रश नबी ने पैदा किया 1400 साल पहले। हर वक्त हुजूर अपने मिसवाक साथ रखा करते थे और इंसिस्ट करते थे कि मुंह साफ किया करो, और हर वक्त नबी खा लेते थे उसके पहले मिसवाक करते थे, खाने से पहले भी करते थे, सोने जावे तो पहले मिसवाक करें, नमाज पढ़ने जावे तो पहले मिसवाक करें, वुजू बाद में करें। ये सारी चीजें हमको नबी ने सिखाई। उस वक्त जो इमामत थी वो बैकग्राउंड में थी, नबूवत यहाँ खत्म हुई, अल्लाह की तरफ से जो पैगाम आना था जमाने के लोगों के लिए वो पूरा हुआ। अब काम क्या था? बाप का काम था, बच्चा बड़ा हो गया, माँ ने मैनर सिखा दिए, अभी बाप का काम था। मुर्तजाली इमाम जो है वो बाप है, इसने तंजीम सिखाई, इसने जिंदगी के बहुत से शोध बताए, खुदा के नजदीक ले जाने के लिए इसने हिम्मत बताई। रसूल अकरम की जिंदगी भी देखो, मौला मुर्तजाली की जिंदगी देखो, नबी से नबी थे, खामोश तबीयत थे, हलीम थे, मुर्तजाली गर्म थे। अगर मुर्तजाली भी नबी जैसे नरम होते तो ये काफ़ी लोग तो खा गए होते, लेकिन बाप का औहदा था, सजा देने वाले थे, डिफेंड करने वाले थे, और रसूल अकरम को बचाने वाले अली थे। इसकी तलवार ने बहुतों के सर उड़ा दिया। अगर अली की तलवार न चलती है मोमिनों, इस्लाम खत्म हो गया होता। बनी उमैया ने जो शरारतें शुरू की थी वो अली की तलवार ने उनको झुका दिया, मजबूर हो गए इस्लाम लाने के लिए। खूब लड़ाइयाँ लड़ी, सब कुछ हुआ, ये हिस्ट्री तो आप पढ़ सकते हो। मुर्तजाली बाप के ओहदे पर, रूहानी बाप के तौर पर उम्मत को बचाया। उस जमाने के अंदर ऐसे बहुत से लोग थे कि जो राजी खुशी से अली नबी के पास जाके अपनी खिदमत पेश करते थे। یہ سلسلہ تمام نبیوں کے زمانے میں تھا, لیکن میں تمام نبیوں کی حقیقت کا بیان نہیں کر سکتا کیونکہ ہمیں سب نبیوں کے نام کا بھی پتہ نہیں ہے. 124,000 نبی اور رسول ہیں, لیکن قرآن پاک میں 29 نبیوں کا ذکر کیا گیا ہے. اور تورات, زبور, انجیل, قرآن, چاروں کتابوں کو اگر کھنگالو تو 96 نبیوں کے نام ملتے ہیں. باقی تو بہت پرانی باتیں ہیں اور ہسٹری اس کو پیش نہیں کرتی ہے. اینی وے, رسول اکرم کے زمانے کے اندر ایسے لوگ تھے جو آ کے خدمت کیا کرتے تھے. بلال تھے, حضرت بلال, وہ حبشی تھے, ابیسینیا میں سے غلام بنا کے کوئی اس کو لے گئے گھر اور مکہ میں جا کے بیچ ڈالا. کسی ایک آدمی نے اس کو خریدا. وہ ظالم مشرق تھا. اور حضرت بلال جو تھے بڑے نیک طبیعت تھے, وہ اندر سے مسلمان ہو گئے. رسول کے پاس آ کے بیعت کی اور رسول پاک نے ان کو ایک ورڈ دیا, ورد دیا, الاحد. الاحد خدا کا نام ہے. وہ دن کے وقت تو غلامی کرتے تھے, رات کو جب سب لوگ دوسرے غلام بھی ایک ہی روم کے اندر سوتے تھے گائے بکریوں کی طرح, دیکھا کہ بھی سب سو گئے ہیں تو اٹھ کے بیٹھے اور ذکر کرے الاحد الاحد الاحد. کچھ دنوں کے بعد طبیعت میں کی راس ہو گئی, جوش آ گیا, آواز بلند ہو گئی, الاحد الاحد الاحد. دوسرے بہت سے جاگ تھے, انہوں نے شکایت کی مالک سے کہ یہ رات کو سونے نہیں دیتا, کچھ بولتا رہتا ہے. ایک دن مالک خود آ کے سنا, بہت بگڑ گیا. دوسرے دن حضرت بلال کو مشتے باندھی, پاؤں باندھے, ہاتھ باندھے اور اس کو دھوپ میں گرم ریت کے اوپر لٹا دیا ننگا, اور چار آدمیوں نے اٹھا کے ایک بڑا پتھر اس کے سینے پہ رکھ دیا. عرب کا ملک دوپہر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ, ننگا بدن, بیچے گرم ریت, حضرت بلال کے سینے پہ چار آدمی اٹھا سکے ایسا بڑا پتھر, سانس لینا مشکل ہو گیا. مارے کھائی, بے ہوش ہو گئے, بھوکے رہے, پیاسے رہے, لیکن الاحد چھوڑا ہے. ایک دن رسول اکرم حضرت ابو بکر کے ساتھ سب گھومنے نکلے تو آواز آ رہی تھی, الاحد. جب یہ دیکھا تو بلال سویا ہے, سینے پہ پتھر رکھا ہے. رسول اکرم بے چین ہو گئے, ابو بکر اس کو خرید لو, میں اس کے پیسے دوں گا, میرے سے لے لوں گا, میں ادھار مانگتا ہوں. اس نے خرید لیا. وہ مالک نے سمجھا جان چھوٹی کافر تھا. یہ ابو بکر نے اس کو خرید لیا اور اپنے مولا کو دیا. حضور نے بعد میں پیسے دینے شروع کیے. اس نے کہا میری مہمانی قبول کرو, غلام خرید کے نبی کو دیا اور زندگی بھر نبی کی خدمت میں رہا. یہ وہی بلال تھا کہ جس کے حلق میں خدا نے یہ طاقت دی تھی کہ جب وہ اذان دیتے تھے تو آسمان پہ ہوئے اڑتے جو پرندے تھے نا, وہ بھی تھر تھرا جاتے تھے. لوگ اپنی دکانیں چھوڑ کے چلے آتے تھے اذان سننے کے بعد. بلال زندگی بھر اس کی خدمت میں رہے. اس طرح سے اور بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں علی نبی کی خدمت میں پسار کی اور اس میں فخر کیا. کبھی پیسہ نہیں لیا. رسول اکرم کو لوگ مہمانیاں بھیجتے تھے, حضور کھا لیتے تھے تو بچ جاتا تھا وہ کھانا, یہ لوگ کھاتے تھے. یہ جھرا جو ہمارے اندر جھرا ملتا ہے जो झूरा है ना वो मेहमानी है हजर इमाम को, जो आदमी झूरा लाता है, लेकिन जो झूरा है वो हजर इमाम की तरफ से हमको मिलता है, यानी इमाम खा लिया अब उसने से हमें थोड़ा सा झूरा देता है। मेरी आंखों में देखिए एक बात आ गई, आज 1988 में हाजिर इमामदार से लगा उपांगा का जमा सोना था, जो दारे वाले उनको याद शहबाज आ गए, बोला के बैठे हैं जमा सोना भरा हुआ है, मेहमानी का पांच काम में पड़ा है, मालूम नहीं क्या ख्याल आया बोला को, ऐसा आगे बढ़ के अंगूर का गुच्छा पड़ा था, एक अंगूर तोड़ा और उन्होंने डाला खाया, सब लोग बहुत खुश हुए, जब ये मौला चले गए सब लोग आए मुख्य साहब इसकी भाजी पर। अभी सब लोग जो थे ना इतना बड़ा लगभग 2 किलो जितना वो गुच्छा था, मैंने मुखी को कहा मैं बोला मुखी साहब ये सारा गुच्छा खरीदने वाला कोई एक आदमी है, शायद वो किसी को दे रहे, लेकिन मेरी एक अर्ज है इसके 10-10 दाने बनाओ और नाजी करो। जब उसने पहली दफा गुच्छा उठाया ना तो एक आदमी ने कहा 100 शिलिंग, अलग अलग 100 शिलिंग उसकी कीमत नहीं थी, अगर ये वाला वो गुस्सा जो गुच्छा था वो चलता तो 1000 शिलिंग में भी नहीं मिलता। मुखी साहब कबूल हुआ, 10-10 दाने बनाए और सारी जमात खुश हुई, ये झूरा है इमाम ने उसमें से खाया, बाकी जो बचा है ना उसको हम झूरा कहते हैं। इसलिए झूरा बहुत अदब से लो, अदब से खाओ, इसमें इमाम ने बरकत डाली है, बहुत प्यार से झूरा था। और मैंने ये भी देखा है कि बहुत सी जमातों के अंदर बड़े बड़े झूरे मिलते हैं, लोग खा नहीं सकते, बाकी बच जाता है, मुठियों कंवरियों को हमेशा कहता हूँ छोटा झूरा लो तो खीसे में आ जा रहे हैं, तो मैं अगर मुठी का मरिया बनाऊँ तो बादाम खिलाऊँ, बादाम एक बादाम उठाओ मैं खा लिया। झूरा का मतलब ये नहीं कि पेट भर के खाओ, लेकिन झूरा इमाम की बख्शिश है। ये लोग जब नबी खा लेते थे जो बचता था वो खाया करते थे। ये हमारा सिलसिला अली नबी की खिदमत करना हमारी जिंदगी के मकसद में है और उस जमाने से चला आता है। मुतजाली लड़ाइयों में जाते थे तो लोग मुतजाली के पास जाते थे उनकी मदद करने के लिए, इमाम हुसैन के साथ 72 आदमियों ने जान दी, वो कोई सोल्जर नहीं थे। हर इमाम के जमाने के अंदर ये चीजें रही। 1842 में अस्मली शर्मा बाप अली शर्मा बाप हिंदुस्तान आए, इसके पहले जब किरमान में रहते थे मौलाना हसन अली शाह, तो बहुत दफ़ा ऐसे इंडिया के लोग मौला के दीदार के लिए ईरान जाया करते थे, लेकिन जो जो हालात बिगड़ते गए ये सिलसिला घट गया और हसन अली शाह अली शर्मा बाप 1842 में इंडिया आए। अभी हालत ऐसी थी असनाली शाह माँ बाप के घर में फतेह अली काचार की लड़की थी, फतेह अली काचार शहनशाह जो था उसके दामाद थे हजरत असनाली शाह। जब फतेह अली काचार गुजर गया तो उसका लड़का तख्त पर बैठा। अब लड़के के घर में वजीर आजम आगरा आकाशी की लड़की थी, बिल्कुल वही बात उस वक्त की बनी कि जब मौलाना मुस्लिम पीर बिला गुजर गए और उस वक्त जो शहजादा बैठा मुस्ते अली उसके घर में वजीर आजम की लड़की थी, दामाद को उसने शाह बना दिया। यहाँ भी ऐसा हुआ, अभी मौलाना हसन अली शाह जो उधर ठहरे उदाबाद बन गया वजीर आजम का, लेकिन हालत हुकूमत सारी अथॉरिटी वजीर आजम के हाथ में रही और वो मौला का दुश्मन था। अब अगर वजीर आजम के साथ भी मौला लड़ते हैं तो शाह जो है वो साला है, बीवी का भाई है, उसके साथ लड़ना मंजूर न हुआ और बराबर भी नहीं था। इसलिए मौलाना हसन अली शाह मां बाप हिंदुस्तान की तरफ चलने लगे, लेकिन आगरा काशी ने बहुत रजिस्ट किया। मौला ने 2000 का लश्कर साथ लिया और ईरान छोड़ दिया। जब मौला हिंदुस्तान आए तो 2000 में से बहुत से कम हो गए, लेकिन पहले कलकत्ता छोड़े मौला, बाद में फिर मुंबई में आ गए। तो उस वक्त मौला के घर में तकरीबन 1500 से 2000 नौकर चाकर रिश्तेदार सब मिला के कुछ लोग मौला के पास गए। मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ, तो आप मुझे कोई काम दो। मौलाना सुनिशा ने कहा कि देख, मेरे पास इतने नौकर चाकर हैं, तो मैं तुम्हें क्या काम दूँ, ऐसा कोई काम है नहीं। तो मौला एक अरज करूँ क्या है खुदावन, ये जो आदमी है, कोई आदमी था उधर नौकर, तो यह खुदावन ये तेरा नौकर जो है ना, इसकी एक बरस की तनख्वाह मैं दूँ, तो इसकी जो खिदमत है वो मुझे उसका बदला दीजिए। मौला को ये बात पसंद आई। तो वो जमाने के अंदर 7-8 रुपये तनख्वाह होती थी। मौला ने कहा अच्छा, बरस के 100 रुपये दे दें। तो वो 100 रुपये दे दे गए, यानी एक बरस उसने हाजर इमाम की पर्सनल खिदमत की। मौला बहुत खुश हुए, उसने किसी से बात की, वो चला गया। या मौला, मैं 2 बरस की इसकी तनख्वाह दी, आपने ये खिदमत कबूल करो। अच्छा, यूँ जब जमात में ये बात फैल गई तो अब तो बहुत हो गया। ये वजह थी और वो ज़माना था कि हमारे मौला ने खिदमत 1-5 साल की खिदमत के नौकरों की तनख्वाह जितने पैसे दिए, बरस के 100 रुपये। फिर ये चीज़ आपस के अंदर सबगरी मिशनरी या ऐसे भारत जो थे, उन्होंने इस चीज़ को ऑर्गेनाइज किया। 5 बरस के खिदमत के लिए 500 रुपये दे दो, तो वो आदमी उसको 5 बरस की मौला खिदमत कबूल करे। ये था आगाज हमारी मंडलियों का। ये मंडलियाँ हाजिर इमाम ने नहीं बनाई, मुरीदों ने बनाई। इस तरह जब बहुत हो गए तो उन्होंने कहा कि हम मजलिस बनाए। मजलिस के लिए मौला की इजाज़त मांगी गई। उन्होंने कहा अच्छा, तुम मजलिस बनाओ। तो 5 साल की मजलिस छुप छुपा के होती थी। मैं बहुत छोटा था तो उस वक्त बम्बई के अंदर उनको तख्त रूम है। उस तख्त रूम में 9वीं रात को, यानी कि इस्लामी महीने की 9th को ये मजलिस होती थी, और पता नहीं लगता था लोगों को ये लोग क्या कर रहे हैं। आस्ते आस्ते ये सिलसिला बढ़ा, 5 साल के 12 साल हुए। और फिर कुछ ऐसे लोग थे जो मौला के हुजूर में गए, या मौला, मेरी जितनी माल मिलकत है मैं सब आपके कदमों में अर्पण करता हूँ, आप मेरी जिंदगी भर की खिदमत कबूल करो। ये सिलसिला बहुत पुराना है, लेकिन हसन अली शाह नवाब के ज़माने में हिंदुस्तान में यह हुआ। और छुप छुपा के कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने ये कबूल किया। लेकिन मैं आपको एक दफ़ा कह चुका हूँ, अन्य भाषाओं में, 12 बरस का एक लड़का कच्छ में से निकला, गरीब, सख्त गरीब, खद्दर के कपड़े पहने, पाँव नंगे हैं, चप्पल वगैरह कुछ नहीं है। बम्बई आया तो दीप तो मांगना नहीं जानता था। उसने क्या किया, खीसा देखा तो 2 आने बचे थे। 2 आने के कच्चे चने लिए और किस जगह बैठ के उनको भुना, पूड़ियाँ बना के तो चने बेचने शुरू किए। काम चलने लगा। 1-2 महीने के बाद जिधर बॉम्बे में अपना कोऑपरेटिव बैंक है, उसके सामने हाशिम इसका ऑफिस का इधर आश्रम प्रेम जी इसकी दुकान के सामने उसकी जहाँ दुख लेके इधर चने बेचा करता था। चने बेचते बेचते जो कुछ भी मिले दसवा भी पता था। इस तरह चलते 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 इसने 12-13 आने जमा किए। बोला आने की आवाज आई तो बहुत खुश हुआ। बोला आए यूरोप से, उस वक्त मैं भी रजबली का बाप था, रजबली मेवा वाला क्राफ्ट मार्केट में फ्रूट की दुकान उसकी। एक दिन सुबह जमात खाने से नियाज पी के उसके उधर गया। आत्मान के कहते हैं उनके साथ में ये सारे गए, मुझे हाफिज आम चाहिए। अरे हाफिज आम नहीं मिलेगा क्योंकि हाफिज आम का सीजन नवंबर दिसंबर में नहीं होता, मार्च में होता है और वो हर साल सर्टन क्वांटिटी आम की नीम को यानी मोम को गर्म करके उसमें दबोया करता था तो आम के ऊपर मोम का कवर आ जाता था। ये उसको प्रिजर्व करने का तरीका था। 6 महीने तक आम बिगड़ते नहीं थे। उसने कहा ये सब चीज इमाम के लिए है, मैं उसको बेच नहीं सकता। बहुत उसको आजीजी की, कहते मेरा दिल चाहता है मैं इमाम के मेहमानी करूँ, मेरे को 12 दिन दे। उसको रहम आया, मुझे रज बली मेवा वाला ने 12 अच्छी मोम निकाले, गर्म पानी से धो के उसकी मोम उतारी, कपड़े से साफ करके एक एक आम को कागज में लपेट के छोटी छोटी टोकरी बनाई, ये उसको दी। ये आदमी का नाम मेघजी। मेघजी मूल जी सिर पे टोकरी रख के नंगे पांव बांद्रा गया। दोपहर को पहुंचा उधर, उस वक्त उधर बांद्रा में इमाम रहा करते थे सुल्तान अहमद शाह। बोला खाना खा रहे हैं, मतलब सलामत बैठी पंखा जल रही है बेटे को। बोला किसने आज आम लाओ, कहता किरान आज आम नहीं मिले। बाबा फरमा मेरे को बाहर चलाता हो जाता, वो कैसे हाथ में लेके बाहर खड़ा रहा तो ये चल आता था। उसने सोचा कि आम बेटा, दूर से पूछा आम है तो बोला हाँ, जल्दी से टोकरी दी। उसको बोला तुम्हें तो खड़े हो, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। अंदर जाके दो की चांदी की प्लेट में आम लेके मौला के सामने रखे। मौला बहुत खुश हुआ, आम ताजा खाया। मौला कहते हैं उसको अंदर बुलाओ। उसको बेगजी भाई को कहा अंदर चलो। अंदर नहीं आता क्योंकि पाँव धूल मट्टी से भरे हुए हैं, कपड़े गंदे हैं, पसीने से धूल आती है। सरकार को नहीं आता। माँ को कहा माता सलामत को भेजा, जाओ उसको लेके आओ। अभी माँ बाहर गई उसको लेने के लिए, वो आया तो आप फरमान किया उसके हाथ धुलाए, हाथ धुलाए पाँव धुलाए। अंदर आया, टेबल सजा हुआ है, चांदी की क्रॉकरी है, बादशाही दरबार है। उसने ये भिखारी कांप रहा है, उसने ये दबदबा कभी देखा नहीं था। हाथ धुलाए पाँव धुलाए, मुझे बात याद आ गई। सुदामा इसी तरह से अपने गांव से निकला, पाँव से चलते चलते सब कुछ लेके आया था, पोटली पीछे लटक रही है। और जब उसने कृष्ण के उधर पाँव रखा तो कृष्ण कहते हैं रुक्मणी को, अपनी वाइफ को कहते हैं उसके पाँव धुलाओ। रुक्मणी माता ने सुदामा के पाँव धुलाए, हाथ धुलाए और उसको पास पिटा के खाना खिलाया। यही बात कहती है, हो सकता है मेरी बहनी जी सुदामा हो गए। बिछाया, चांदी की प्लेट रखी, माता को कहा इसको खाने दो। अब ऐसी कंडीशन में क्या खा सकते, माता मेला आम खाते जाते हैं, उसको दुआ देते जाते हैं। और वो रो रहा है बेचारा खुशी से दबदबे से। ये मूर्ति मेघ जी मूर्ति दर्शाने का मूर्ति बना, लेकिन चने बेचते बेचते उसको ऐसी बरकत दी। 1914 की जब लड़ाई हुई, पहली लड़ाई, तो मेघजी भाई के पास उस जमाने के 50,000 रुपए थे, छोटी सी मिल की आती थी, सारी चीजें हिसाब वगैरह करके कागज बना के इमाम के हुजूर में गया, बोला कि कदमों में ऐसा पूछा था, क्या है मेरे जी? क्या है? सिरबंदी है मेरे बल्ला। सिरबंदी हमारे मजहब की एक ट्रेडिशन है, सिरबंदी। सिरबंद होने का मतलब यह है कि तन के 3 कपड़े रख के बाकी जो कुछ भी है वो सब मौला को दे देना, तन मन धन दीन अर्पण कीजिए। सुल्तान मोहम्मद शाह ने उसमें से कुछ एक आध नोट उठाई, हाथ रख के कबूल किया और कहा, मैं जी ये मैं सब कुछ तुमको बख्शीश देता हूँ। उसने सिरबंदी की है, बख्शीश मिली। उसके बाद तो बहुत चढ़ा, जिंदगी भर की जो खिदमत है इसको सिरबंद कहते हैं। इस वक्त हम जो यहाँ बैठे हैं, हम बड़े खुशनसीब हैं, ये सिरबंदी है। लाइफ डेडिकेशन, जिंदगी भर की खिदमत इमाम को अर्पण की, और उसने एवरेज जिंदगी के 50 बरस लेके बरस के 100 रुपए के हिसाब से 5,000 रुपए ये सिरबंदी की कबूल की। ये सिरबंदी है, दसबंदी यारा सिरबंदी, नर कायम शानी पूजा, तेरे सिर पर आया रोज क्यामत भाई, 100 दिन मेरे आया। इस अगर दिन याद कराते हैं कि मौत का कुछ पता नहीं, वो नजदीक है दिन, इसलिए तू सिरबंदी कर, दसबंदी भी बन, सिरबंदी भी बन। ये नर क्राइम की पूजा है, अगर ईमान की पूजा है, ये उसकी इबादत में शामिल हो रहा है। हमारी जो खिदमत उसने कबूल की है, उसका रहम है। ये जो लाइफ डेडिकेशन की है, हमने डेडिकेट किया है, हमने राजी खुशी से ईमान को अपनी जिंदगी की खिदमत भेंट की है, अर्पण की है, गिफ्ट दिया है, और उसने रहम करके कबूल किया है। दरअसल मैंने एक बात की थी लाइफ डेडिकेशन के बारे में, मैंने कहा मौलाना हमने हाजिर इमाम को जिंदगी अर्पण की है, उसने रहम करके कबूल किया है, लेकिन अपनी जिंदगी को देखा है, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, बदमाशियां गुनाह करते हैं, ये गंदी जिंदगी इमाम को अर्पण करते हो? ये जिंदगी बात 5,000 रुपए की नहीं। इस वक्त मैं आपको बोलूं, इमाम की रहमत का हिसाब देखो, आज भी अफ्रीका के अंदर 5,000 शिवलिंग है। आज इस वक्त भी जो उधर रहते हैं उनको इस मंडली में आने के लिए 5,000 शिलिंग देने चाहिए। दारुसलाम में एक अमेरिकन डॉलर के 1,200 शिलिंग है, यानी $4 में लाइफ का नंबर बन जो तुम्हारी है उन्हें, और हाजिर इमाम को कई दफा कह चुके हैं खुदा ने इतना रेट गिर गया है। माँ बाप फरमाया मुझे पैसे की बात, मेरे मोमन का दिल गया, 5,000 शिलिंग के 4 डॉलर बनती है, 1,200 शिलिंग का 1 डॉलर, लेकिन आज भी उधर इमाम ने उसको डॉलर में चेंज नहीं किया, 5,000 के 25,000 नहीं बनाया, भाई 5,000 है तो जो आगे हसन अली शाह के जमाने के अंदर थे, दिल दिया तेने सब कुछ दिया। हजर इमाम ने हमको रहम करके इस मंडली में कबूल किया, रहम करके उसने हमारी जिंदगी की खिदमत हुई है। और इमाम सुल्तान अहमद शाह की फरमान को भी कभी पर मिलाते हैं। मौला सुल्तान शाह कहते हैं, लाइफ के मेंबर हो, जब तक तुम्हारा पाँव जमीन पर है मेरी खिदमत में रहो। मैं एक जगह का नाम नहीं लेता, नमाज करने के लिए गया तो काउंसिल का प्रेसिडेंट मुझे कहते हैं, मिस्टर साहब ने फलाना आदमी है ना, हम चाहते हैं कि ये मुखी बने, आज कई सालों से इनकार कर रहा है। दो तीन दिन के बाद लाइफ में रिवाज थी तो मैं ये पॉइंट लेके आया। इमाम सुल्तान शाह फरमाते हैं, तुमने अपनी जिंदगी मुझको डेडिकेट कर दी है, अब तुम्हें अपनी जिंदगी के ऊपर कोई हक नहीं। अगर इमाम की खिदमत के लिए पुकारा जाए तो लाइफ डेडिकेशन वाला ना नहीं कर सकता। कितनी भी तकलीफ हो गए इमाम की सर्विस के अंदर, लाइफ डेडिकेशन का मेंबर जब उसको कोई खिदमत पेश की जाए कौंसिल या इमाम की तरफ से, उसकी कोई ताकत नहीं तो वो कहे नहीं, मैं कर नहीं कर सकता, उसको लाइफ में से बाहर निकल जाना चाहिए, वो तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। एक दफा डेडिकेट कर दिया हम वापस तो नहीं ले सकते, लेकिन शर्म जरूर आनी चाहिए। अल्लाह कहता है, अरे मोहम्मद, जिन्होंने तुम्हें अपना हाकम माना है और तू जो कुछ भी उनके लिए फैसला करे, उनका हक नहीं है कि तेरे फैसले से इनकार करे, क्योंकि तुम उनका हाकम है। यही बात यहाँ है, हमने अपने इमाम को अपना मालिक मान लिया है, तन मन धन दे दिया है, उसकी गुलामी कबूल की है, उसकी मुरीदी कबूल की है। और फिर वो कहता है कि जाओ ये काम करके आओ, मैं सब मेरे पास टाइम नहीं है। अरे ये तो ईमान की खराबी की बात है, लाइफ डेडिकेशन वाले ने ईमान को अपनी जिंदगी अर्पण कर दी है। और मैं ये भी देखता हूँ कि कई लोग लाइफ में आते हैं महज इसलिए कि लोग ना कहें कि तू है वो लाइफ का मेंबर नहीं थे, ये कहने के लिए कि मैं लाइफ का मेंबर हूँ हम लाइफ में आते हैं, ये नहीं होना चाहिए। और नए आदमियों को आने की कोई जरूरत नहीं, जब तक कि उनके दिल के अंदर ये चीज नहीं आवे कि जिंदगी भर हज़रत इमाम की खिदमत करनी है, जिंदगी भर उसकी गुलामी करनी है और राज़ो खुशी से करनी है और दुख उठा के करनी है, बेइज्जत होके करनी है, मार खा के गालियां खा के भी उसकी खिदमत करनी है और करनी है। हमारा मजहब ही है, लाइफ में एजुकेशन कोई आसानी चीज नहीं है। इमाम को जिंदगी अर्पण करके फिर हमारा अपनी जिंदगी को कोई हक नहीं, अपनी इस जिंदगी को उसके हुक्म के हिसाब से चलाओ, अपनी इस जिंदगी को जिस तरह वो कहता है इस तरह यूज करो और इमाम के घर की खिदमत करो। लाइफ डेडिकेशन इमाम की जिंदगी उसके सामने, इमाम की जिंदगी या जिंदगी से हमारा मुराद हज़रत इमाम का एक वारा, सुल्तान मोहम्मद शाह का वारा 72 ईयर्स चला। इमाम की जिस मुद्दत तक इमामत चलती है वो एक वारा है। अगर हम हज़रत इमाम की अपनी जिंदगी देकर सच्चे दिल से उसकी खिदमत करते हैं तो इमाम की जितने बरस इमामत चलती है उसका सवाब हमें मिलता है। भले आप 3 महीने 4 महीने 1 बरस 2 बरस खिदमत करो, लेकिन आपने इस वारे की हज़रत इमाम को अभी तक 46 ईयर्स हुए, लेकिन ये वारा हज़रत इमाम का वारा अगर 60-70 बरस तक चले और आप में से कोई भी हज़रत इमाम की को खिदमत करे तो उसने 60-70 बरस हज़रत इमाम की खिदमत की है, सारे वारे का सवाब मिलता है। किसी भी तरीके से जब बुलाया जाए सर्विस के लिए, सर्विस के लिए हाजिर हो जाए, ये वॉलंटियरिज्म भी है लेकिन ये लाइफ डेडिकेट करने के लिए निशानी है। भले कोई मुखी के, कोई प्रेसिडेंट के, कोई मेंबर अगर इमाम की 2-4-10 बरस खिदमत की हो गई, लेकिन मैं फिर रिपीट करके कहता हूँ, उसको हाजिर जोने की जितनी भी ड्यूरेशन है उस सारी ड्यूरेशन उसने इमाम की खिदमत की, इतना उसको सवाब मिलता है। ये मजहब बहुत सस्ता मजहब है। सस्ता इसलिए कि महंगी महंगी चीजें सस्ती मिलती हैं। 5,000 शिलिंग में सारी जिंदगी की खिदमत कबूल है। आपके अगर कितने 700 के करीब डॉलर होंगे, कितने भी, लेकिन इतने डॉलर में हमको सारी जिंदगी की मौला खिदमत कबूल करे, ये तो सवाब कहाँ मिले। ये इमाम जमान की रहमत है, बख्शीश है। जैसे मैंने आपको कहा कि ये सिरबंदी की तरह है, हमने इमाम को अपना सब कुछ दिया है, उससे प्रेम करो, मोहब्बत करो, उसकी इबादत करो, उसका हुक्म मानो, उसकी खिदमत करो, और खिदमत इबादत के दर्जे के बराबर है। आप इबादत ना करो और खिदमत करो वो कबूल नहीं है। लेकिन इबादत की जो खामियां हैं वो हज़रत के घर की खिदमत करने से वो खामियां पूर होती हैं। इसलिए इबादत का दर्जा जो है वो खिदमत में से निकलता है। इबादत की खिदमत है, लेकिन सुबह की जो इबादत है उसका तरीका और होने की वजह से, अगर हम दिन के वक्त या रात के वक्त जमात की कितनी की खिदमत करते रहें, ऐ मोमिनों, वो हमारी इबादत के दर्जे की चीज़ है, हमको बख्शीश मिलती है। अगर हम अपने मजहब में पक्के हैं और सुबह इबादत करते हैं, वो अल्लाह दुनिया में कभी हैरान नहीं होंगे। ये मेरे जी मूर्छी 12 बरस की उम्र में भड़गूंजा बन के, भड़गूंजा नीचे में से उसने जिंदगी शुरू की, दरखाने का मुखी बना। दरखाना बॉम्बे का जो है वो सारी दुनिया का दरखाना है। उसको अफजल शाह माँ बाप ने बनाया, लेकिन अली शाह माँ बाप ने, मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ने और हजर इमाम ने अभी तक उसका स्टेटस गिराया नहीं। बॉम्बे का खड़क जमाखाना जो है वो आज भी सारी दुनिया का दरखाना है। उसका स्टेटस असल ईशा मोहम्मद के जमाने से चला, उसका ये मुखी बना। इमाम की खिदमत मैं बड़ा हूं, मैं ऐसा क्यों करूं। इधर कहीं कोई कागज पड़ा हुआ मिल जाए, बच्चे बहुत दफा फेंक देते हैं, उठा लो, ये भी खिदमत है। बूटों की संभाल रखने वाले खिदमत करते हैं, पानी पिलाने वाले खिदमत करते हैं, गाड़ियों का देखभाल करने वाले खिदमत करते हैं। ये सब वॉलंटियरिज्म जो है ये हकीकत में हमारे मजहब की लाइफ डेडिकेशन में है। और ईमान का एक हुक्म भी है कि जो आदमी 25 बरस तक फ्री खिदमत करता रहे, यानी ऐसे भी हैं कि जो नौकरी करते हैं मौला के घर की, वो नहीं, वॉलंटियर की खिदमत दे रहे 25 बरस तक, और उसके पास इस मजलिस में आने के लिए दाखिले के पैसे नहीं हैं, तो हज़रत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का हुक्म है कि मुख्य कमड़िया काउंसिल रिपोर्ट करें, तो मैं उसको लाइफ डेडिकेशन का काम फ्री बख्शीश दूंगा। उसमें इस वक्त एक आदमी जमात खाने में खड़ा आवाज कर रहा है, अबू अली नाम है इसका, इसको इसी तरह से लाइफ डेडिकेशन मिली, मैंने पैसे नहीं दिए, मेरे मौला ने मुझे बख्शीश दी। ये हुक्म है उसका, 25 बरस की खिदमत में लाइफ डेडिकेशन मिल रहा है। बात पैसे की नहीं है, बात है तमन्ना की, बात है खिदमत करने की। इमाम के घर के मजे उठाओ, खिदमत करो, किसी भी तरीके से खिदमत करो, और जमात के अंदर अगर कहीं ज़रूरत पड़े $5-10 खर्चने की तो खर्चो। ऊपर का जमात खाना रिपेयर हुआ, मुखी ने कहा बिस्तर साहब ज़रा 10 मिनट बोलो ना, हमको 68 लाइट चाहिए। मैंने थोड़ी सी 10 मिनट तो स्पीच की और मैंने कहा हमको 68 लाइक्स चाहिए। एक आदमी ने कहा 10 लाइक मेरी, दूसरे ने कहा मेरी 30, एक कहता सारी की सारी मेरी। ये है स्पिरिट हमारी। इमाम के घर की जो खिदमतें हैं उसमें माल दौलत का खर्च करना भी आपके हुजूर में यानी सरकार हजरत इमाम के हुजूर में मेहमानी के तौर पे है और इमाम इस स्पिरिट के ऊपर खुश होता है। ये हमारी इस्माइली स्पिरिट है कि हम हजरत इमाम के घर की खिदमत करते हैं किसी न किसी तरीके से। एक भाई दूसरे भाई की यानी इस्माइली जमात जमात के अंदर भी हम कभी किसी की मदद करते हैं, खिदमत करते हैं, तो हाजिर इमाम बहुत दफा गो आउट ऑफ योर वे एंड हेल्प अदर्स। ये है हमारा दीन। ए मोमिनो, दिनों दुनिया की दौलतें मौला आपको दे दे, खुशी और आबाद दे दे, तंदुरुस्ती दे दे, इज्जत आबरू में इजाफा कर दे, बलायाफतें दूर करे, आपके ईमान को मजबूत करे, आपके दिल में इश्क पैदा करे, दसवंधी सुप्रीति बना दे, मौला की मोहब्बत में मस्त रहो। दीन और दुनिया के अंदर हजरत इमाम आपको हर जगह अपनी मदद में अपने छत्र साये में रखे। मौला आपकी हर नेक उम्मीद पूरी करे। सुखी रहो और आप।